अंदर से ऑटो पर बगैर इरादा किए सादिर हो जाती, निकल जाती। मसलन एक आदमी से आप बात करें, जैसे आप किसी से मिले, आपके जहन में पहली क्या चीज आई, देने की आई या लेने की आई? जो सबसे पहले आपके जहन में आई बात, वो आपकी आदत है। मैं किसी से बात करूं और बात करने में बगैर किसी इरादे के मेरी जबान सच बोले, इसका मतलब मेरी आदत क्या है? सच बोलने की। इरादा नहीं करता फिर भी बोलती। मैं कहीं पे जा रहा हूं, सामने कोई अच्छा मंजर नहीं है, गलत मंजर है, उसकी तरफ देखे बगैर सिर्फ इस एहसास पे कि मंजर गलत है, मेरी आंखें इधर उधर हों, उसको ना देखें, इसका मतलब है पहली आदत मेरी आंखों को महफूज करने की है। इस तरह आप अपनी जिंदगी की आदतों को पहचाने। जिस चीज को करने के लिए आपको अपने आप को प्रेशराइज ना करना पड़े, अनइंटेंशनली ऑटो पर आपसे हो जाए, इसका मतलब क्या है? आदत है। सही। अब बहुत सारी अच्छी आदतें हो सकती हैं, बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं। सबसे अच्छा सरमाया क्या है? सबसे अच्छा सरमाया अच्छी आदत है। अब मैं अपने लिए इसको और क्लियर करने के लिए पूछता हूं, मसलन बहुत प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूं ताकि आपका वक्त जाया ना हो। मसलन आप जो दुरूद भेजते हैं इंटेंशनली अनइंटेंशनली, आदत किसे कहते हैं? अनइंटेंशनली, बगैर सोचे समझे जब आप दुरूद भेजते हैं तो आप दुरूद के माना को सोचते हैं या नहीं सोचते? नहीं सोचते। आदत क्या? बगैर सोचे समझे दुरूद पढ़ना, ये अच्छी आदत है? नहीं, गलत आदत है। आज तो मिलाद का दिन था, मैंने फातिहा नहीं पढ़ा। अगर मैं फातिहा पढ़ाता तो ऑटो पर जो आपने फातिहा पढ़नी थी वो सोचे समझे पढ़नी थी या बेसोचे समझे? कितने लोग फातिहा पढ़ते वक्त इया का नाम दुआ इया का नस्ताईन सोचते हैं? बेसोचे समझे, ऑटो पर बेसोचे समझे पढ़ते हैं, ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? अच्छा, कितने लोग नमाज को अगर बगैर किसी प्रेशर के पढ़े तो तवज्जो से पढ़ते हैं या बेतवज्जो ही में पढ़ते हैं? जो आप करते हैं वो आपकी आदत है। आप अपनी आदतें ढूंढें कि आपकी जिंदगी में आदतें क्या हैं। ये जो चंद आदतें मैंने आपसे अर्ज की, इनमें देखने की कोशिश कीजिए ऑटो पर आदत क्या है। मसलन अगर कंट्रोल ना करें तो लोगों को दिखाने का दिल चाहता है या लोगों को ना दिखाने का दिल चाहता है? कंट्रोल ना करें और दिखाने का दिल चाहे, इसका मतलब है आदत रियाकारी पर है। ये अच्छी आदतें नहीं है। अब आप देखिए इस तरह से हमारी आदतें क्या है, इससे मुझे और आपको अपनी शख्सियत को समझने का मौका मिलेगा। हमारी शख्सियत बहुत सारे पर्दों में छुपी होती है, ये कोई टैबलेट की तरह नहीं लगी हुई होती दीवार के ऊपर, ये तह दर तह पर्दों के अंदर छुपी होती। हम्बलनेस, एरोगेंस, शो ऑफ, सब का सब, सिंसेरिटी, सब अंदर छुपा हुआ। और मैंने अर्ज किया तह दर तह, इसको कुरेद के निकालना समझना आसान काम नहीं होता। इसको कुरेदने के लिए आपको ये देखना पड़ता है आप नहीं प्रेशराइज करें तो पहला काम क्या हुआ। और मैंने आपकी खिदमत में चंद बहुत दुनिया की मतलब आदत की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब मैं आपकी खिदमत में एक आदत अर्ज करना चाह रहा हूँ, इसको आप डेवलप करेंगे इस तरीके से, ठीक है? इससे पहले कि अर्ज करूँ थोड़ा सा पॉइंट इसमें भी बोल देता हूँ कि ये आदतों को डेवलप कैसे करता है इंसान, क्योंकि ये जिंदगी का सख्त तरीन काम है। कोई मुझसे कहना दुनिया में पैसा कमाना आसान है तो मैं कहूँगा हाँ एक लिहाज से आसान है, सख्त काम क्या है? तो मैं कहूँगा आदत को तब्दील करना सख्त काम है। और ये इत्तेफाक से भी नहीं होता। इंसान कहे मुझे एक आदत लग गई है, आदत लगती तो इत्तेफाक से है, जाती इत्तेफाक से नहीं है, इत्तेफाक से लग जाती है, ये जाती नहीं है, जाने के लिए बहुत दम मारना पड़ता है इसके लिए। तो आप अपने क्या तरीके का इस्तेमाल करें कि कोई बुरी आदत नाउजुबिल्ला अगर लग जाए तो चले चली जाए फिर वो। चंद पॉइंट रिस करता हूँ, दुरुद भेजेगा मोहम्मद अपने ऊपर रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई फर्ज करें खुदा न करे नाउज़ुबिल्लाह ताला मुझे गलत आदत पड़ गई। वो क्या गलत आदत पड़ गई? वो ये कि अगर मेरा नफ्स, मेरा ज़मीर, मेरा एहसास मुझे कहता है कि सामने कोई गलत मंजर आने वाला है तो मेरी पहली ख्वाहिश ये हो जाती है कि मैं देख लूँ। ये गलत आदत है। तकवा क्या है? तकवा ये है कि जैसे ही जहन को एहसास हो कि सामने गलत मंजर है, आंखें झुकी हैं। ये तकवा है। ये क्या आंखें उठे, इसका मतलब है कि ये तकवा नहीं, ये गलत आदत है। अच्छा, अगर मैं इस आदत से जान छुड़ाना चाहता हूं तो क्या करूं? किसी भी आदत से जान छुड़ाना चाहता हूं क्या करूं? पहले तो सबसे पहले गौर करूं कि इस आदत का मेरे ऊपर कोई बुरा असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। आदत के बुरे असर को समझने की कोशिश करूं। फर्ज करें मुझे शो ऑफ की आदत हो, दूसरों के सामने अपनी शख्सियत को साबित करने की आदत है। भाई फर्ज करें मैं अपने ऊपर रखे कहता हूँ, मतलब मैं मजलिस के अंदर बैठा हूँ, कोई मुझसे सवाल करता है, कोई मुझे ये कह रहा है, अचानक मेरे दिमाग में आया कि जरा मैं इनको बताऊं मैं हूं कौन। हो सकता है ये अच्छी आदत है? नहीं, बहुत बुरी आदत है। इसका मैं क्या इलाज करूं? इसका मैं इलाज किस तरह से करूं? सबसे पहले तो मैं सोचूं कि इस बुरी आदत के नुकसान क्या क्या है। अगर मैं बुरी आदत के नुकसान पे कन्विंस नहीं हूं तो मैं ये बुरी आदत नहीं छोड़ूंगा। फिर लाख में दुआएं मांगता रहूं खुदा छुड़वा दे, नहीं छुटेगी। क्यों? अब कन्विंस ही नहीं होगी ये बुरी आदत है। छोड़ेगा तो वो जो कन्विंस होगा कि बुरी आदत है। तो सबसे पहले तो आप इसके ऊपर अच्छी तरह गौर कर लें, इसमें चाहे तो कुछ रिवायतें पढ़ लें। अगर खुदा ना करे वो आदत कोई गुनाह है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आयतुल्लाह दस्तगैर की किताब गुनाह कबीरा से पढ़ लें। उसमें एक एक गुनाह के लिए रिवायतें लिखी हुई हैं, इस गुनाह का ये असर होता है, उस गुनाह का ये असर होता है। तो वो जरा रिवायतों को पढ़ ले कि भाई इस गुनाह और इस बुरी आदत का मेरे ऊपर क्या असर पड़ेगा इस दुनिया में, आखरत में, बरज़ख में। पहले तो बुरी आदत की बुराई को रियलाइज कर ले, ये पहला स्टेप। अगर आपने बुरी आदत की बुराई को रियलाइज ही नहीं किया तो फिर समझते इससे जान नहीं छुटेगी। पहली बात, मसलन और बुरी आदत अर्ज कर दो, मसलन किसी को बुरी आदत पड़ गई है बच्चों को झड़कने की, चिल्लाने की। अच्छी आदत है बुरी आदत है? बहुत बुरी आदत है। अच्छा, ये जो चिल्लाने की आदत है, सबसे पहले तो ये सोचे कि जो मैं इसके सर पे चिल्ला रहा हूं इससे होगा क्या? यहाँ पे तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना शुजा और बहादुर होगा जो बेगम पे भी चिल्ला ले। इतना शुजा यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ऐसे बेबाक मिल जाते हैं। उनको भी चाहिए कि जरा अच्छी तरह सोच लें कि इस बुरी आदत का असर होगा क्या। वो क्या असर होगा मैं पहले से बता देता हूँ मुझे कि एक दिन उसके भी शेर बनने का टाइम आएगा। फिर वो जो तुम्हें भीगी बिल्ली बनाएगी बहुत वक्त होगा। पहले अच्छी तरह सोच लो ये बुरी आदत है, इसका असर होना क्या है। औलाद के चीखे, अहले खाना पे चीख रहा है, दोस्तों यारी दोस्तों के अंदर गुस्से में आ जाता है, शॉपिंग करने लगता है, होगा क्या? कुछ नहीं होगा, तुमने अकेले मरना है। क्यों? तुम्हारे दोस्त खत्म हो जाएंगे, ये होगा। अकेले मरना को पसंद नहीं पसंद तो ये छोड़ दो। अच्छा, वो सोचेगा जब मैं कमजोर होने लगूंगा तो मैं छोड़ दूंगा, उस वक्त तक तो सब छोड़ भी जा चुके होंगे, इतना देर कोई इंतजार नहीं करेगा, सब जा चुके होंगे। ये अभी कर लो जब तक ताकतवर हो, बाद में फिर कोई फायदा नहीं होगा। बाद में तुम चिल्लाते रहोगे मैंने छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया, तो कहेंगे कि अब तक छोड़ने से तू कर क्या सकता था जो अब छोड़ दिया। अभी छोड़ो। तो भाई पहला मसला क्या है? पहला स्टेज ये है कि आप बुरी आदत की बुराई को रियलाइज कर लें। रियलाइज कैसे करें? एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, थोड़ा रिवायात पढ़ लें, थोड़ा अपने मुखलिस दोस्तों से पूछ लेंगे भाई ये आदत बुरी है इसका असर क्या होता है। जो एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं, कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, उनसे भी जरा मालूम किया जा सकता है कि भाई इसके रिजल्ट में क्या होता है, वो आपको बता दें। ये पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज ये करना है कि जब भी बुरी आदत आपसे हो, किसी इबादत से अपने आप को सजा देना है। मसलन जनाब अली, मेरे अंदर ये बुरी आदत पड़ गई है, दो जुमले तो मैं मजलिस में वो पढ़ता हूँ जो खुदा की खातिर पढ़ता हूँ, दो जुमले अपने शो ऑफ की भी पढ़ता हूँ मसलन, तो मैं क्या करूं, मैं अपने ऊपर सजा रखूं कि अगर मैंने मजलिस में कोई एक भी हरकत ऐसी की जो शो ऑफ की थी, तो मैं मजलिस के बाद मसलन चार रकत नमाज मगफरत की पढ़ूंगा। क्यों किया है? मुझे नहीं करना चाहिए, दूसरों को दिखा के मुझे क्या मिलेगा, रियाकारी है, गुनाह है, शिर्क है, दूसरों के साबित करके कि मुझे कुछ पता है क्या मिलेगा, जो सवाब मैंने हासिल किया था वो भी चला गया। मसलन अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं बैठा हूँ यहाँ पे एक दुआ पढ़ रहा हूँ और मुझे पता है पीछे वाले भी सुन रहे हैं, अब मैं कौन ऐसी दुआ पढ़ूँ जरा सब लोगों को पता चले कि मुझे वो दुआ आती है जो इन सबको भी नहीं आती। हाँ जी, किसके लिए पढ़ रहा है ये भाई? महबूद के लिए तो नहीं पढ़ रहा है ये, पीछे बैठे हुए अब्दुल गफूर के लिए तो पढ़ सकता है, लेकिन ये अल्लाह के लिए नहीं पढ़ रहा। तो अगर कोई ऐसा काम करे तो क्या करे, इसके ऊपर अपने आप को इबादत से सजा दे। इबादत से सजा देगा तो क्या फायदा होगा, जरा फायदा ये होगा कि शैतान भी कैलकुलेट करेगा कि गलती करवाऊंगा तो ये चार रकअत नमाज पढ़ेगा, गलती करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा। लगभग शैतान हमें इतना फंसाता है, कहीं हम भी उसे फंसा के दिखाएं जरा उसको, पता चले। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। जब भी गलती करें, आदत गलत आदत सादिर हुई, शैतान को सजा दें इबादत से, और उसको बताएं कि बदबख्त तूने मेरे साथ एक हरकत की थी, अब देख मैं ज्यादा इबादत करूंगा, ज्यादा इबादत करें। तीसरा एक काम क्या करें, गलत इबादत को कंपनसेट करने के लिए, दूर करने के लिए बल्कि एक अच्छी इबादत अपने अंदर बढ़ा दें और खुदा से कहें, खुदा मैंने तेरे दीन की अच्छी इबादत को, अच्छी आदत को इख्तियार किया है ताकि तू मेरी इस गलत आदत को खत्म कर दे। मसलन इन्हीं बुराइयों में से कोई बुराई मुझे लग जाए तो मैं अपने अंदर एक आदत बना दूं। मसलन क्या आदत बनाऊं, हर रोज सुबह रिवायत भी है हमारे पास, मौला अमीर मोमिनीन से दुरूद भेजेगा, मैंने अपनी आदत बना ली कि मैं हर रोज सुबह नमाज फजर के बाद 11 मरतबा खुल बोलता हूँ। रिवायत है हमारे पास? हाँ रिवायत है। कोई गलत आदत मुझे लग गई, मैं उसे छोड़वाना चाह रहा हूँ, मैं उसको छोड़वाने के लिए क्या करूं, एक अच्छी आदत बढ़ा दूं। कौन खुदा है, मैं 11 मरतबा खुल बोल्ला पढ़ूंगा फजर की नमाज के बाद, तू मेरी बुरी आदत खत्म करवा दे। कोई और बुरी आदत लग गई नाउज़ुबिल्लाह, उसे छुड़वाना चाह रहा हूँ तो क्या करूँ, अल्लाह से कहूँ खुदा मैं नमाज़ वो फ़ायदा हर रोज़ पढ़ूंगा, तो मेरी ये बुरी आदत खत्म करवा दे। आप जितना अच्छी आदतें बढ़ाएंगे ना, ये बुरी आदतें खत्म होना शुरू। लेकिन इंटेंशनली वर्क करना पड़ेगा हर आदत के ऊपर अलहदा से। आप ये नहीं सोचिएगा मैं ओवरऑल बुरी आदतों से लड़ा हूँ, नहीं, ओवरऑल लड़ने से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक आदमी को 5 बीमारियां लग गई हैं, वो कह रहा है मैं ओवरऑल मेडिसिन खा रहा हूँ। भाई हर बीमारी के लिए अलग खानी पड़ती है, ओवरऑल मेडिसिन खाने से बीमारी खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता
है। अमृत धारा भी तो चाहिए, सारी बीमारियों
को आजकल नहीं मिलती है, आप ये आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बताएं फिर वो आपको ऐसे ऐसे धारे पिलाएंगे। क्या आप सब अपनी सेहत और सलामती के लिए, मजीद तौफीकात के लिए, खुशियों में पाकीज़ा खुशियों में इजाफे के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद वाले। तीन पॉइंट्स। नंबर वन, रियलाइजेशन कि ये बुरी आदत है। नंबर टू, बुरी आदत को सजा देना इबादत से, जब भी हो करूंगा ये सजा दूंगा। नंबर तीन, बुरी आदत के अगेंस्ट एक अच्छी आदत को बढ़ा दो। तो मैंने मसलन कहा, जैसे भाई आपने कहा मैं फजर की बात 11 मरतबा खुल अल्लाह पढ़ूंगा, वैसे अगर मैं फजर की बात 11 मरतबा खुल अल्लाह पढ़ूं तो कितनी देर लगेगी इसमें? अच्छा इसको मैं एक ट्रिक आपको अर्ज कर देता हूँ हमेशा की भी, आप जब भी आपको कोई सुनने को मिले ये काम करो मसलन 11 मरतबा, ये काम करो 5 दफा, ये काम करो 10 मरतबा, एक दफा स्टॉप वॉच लगा के इसका टाइम नोट कर ले। इससे क्या फायदा होता है, मसलन फर्ज करें मैंने आदत चाही थी कि हर फजर के बाद 11 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ूंगा, एक दिन मुझे जल्दी होगी तो शैतान मुझे क्या कहेगा, आज जल्दी आज मत पढ़ो। आप पहले से टाइम नोट करके रख लें कि भाई इसमें 1 मिनट 45 सेकंड लगते हैं, इतनी जल्दी नहीं है, 1 मिनट 45 सेकंड में कौन सा अल्लाह वाला है। टाइम नोट कर लें, हर अच्छे काम का टाइम नोट कर लें, जैसे जिक्र वगैरह औस्कार वगैरह होते हैं ना, शैतान यही करते हैं ना, आज बहुत जल्दी आज बहुत जल्दी, तो आप देखिए भाई 1 मिनट 45 सेकंड से कोई आधार नहीं टूट रहा, ये पढ़ लेता हूँ। मतलब शैतान कहेगा कि कल रात आप बहुत देर से सोए थे, आज जरा जल्दी सो जाएं, तो बस फजर में बस फजर ही पढ़िएगा। तो आप उसे बताएं कि 1 मिनट 45 सेकंड तो मुझे ब्रश करने में भी लग जाते हैं, तो कम से कम ये तो कर लूं मैं। इस तरह शैतान को पकड़ें, शैतान आपको दुनिया में अल्लाह से दूर करना चाह रहा है, आपको इस दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। सही, तो ये आदत, अच्छी आदत और बुरी आदत, और बुरी आदत से निपटने का थोड़ा सा तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। अब आप क्या करने, आप ये करेंगे आप अपनी जिंदगी की जो ऐसी आदत हो जिससे आप या आपके अतराफ के लोग सबसे ज्यादा परेशान हो, उसे आज 17 रबीउल अव्वल के दिन चुन लें कि भाई मेरे अंदर ये आदत है, मैं इससे बहुत परेशान हूं, इससे जान छुड़ा दें, आज चुन लें और 1 महीने का टारगेट बनाएं, आज 17 रबीउल अव्वल का एफर्ट शुरू करूंगा, 17 रबीउस्सानी तक खत्म, टारगेट्स बनाए। और ऊपरी आदत जरा सोच समझ के चुनिएगा। एक वाकया मेरे साथ हो चुका है, लिहाजा मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। एक दफा मैंने इसी तरीके से दर्श दिया कि भाई बुरी आदत खत्म करो, ये करो वो करो। कल एक साहब मिले मुझे अगले दिन, कहने मौलाना मैंने इंतखाब कर लिया। मैंने कहा क्या बुरी आदत, कहने का मेरे अंदर बुरी आदत है कि मैं लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देता हूँ। माशाल्लाह, ये क्या कमाल किया आपने भाई, को बुरी आदत ढंग की बुरी आदत पकड़ो। कोई आता है कहता है मौलाना मैंने तो बहुत गौर किया, मुझे तो कोई बुरी आदत समझ में नहीं आ रही अपने अंदर, तो मैं कहता हूँ मुझे एक पता चल गई है, खुद बहुत पसंद हो। तो अगर इतने खुद पसंद ना होते तो कोई बुरी आदत निकली जाती, मासूम थोड़ी हो। अगर किसी को अपनी बुरी आदत नजर नहीं आ रही ना, इसका मतलब है इसके सामने आईना बहुत ब्लर हो गया है, इसको चाहिए ऐनक अच्छी तरह साफ करे, दोबारा से देखे। हम मासूम थोड़ी हैं, हमें तो पता नहीं कितनी खराबियां होंगी, अगर नजर नहीं आ रही इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम देख ही नहीं रहे अच्छी तरह। देखिए ये चंद आदतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, बुरी आदत कैसे लड़ना होता है, ये सारी बातें। अब मैं आपकी खिदमत में मौला की एक रिवायत अर्ज करूंगा, वो भी इस शर्त पे कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म ही ना हो गई हो, मैंने उसको बहुत बचा के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहती तो मैं चाहता हूँ कि देख के पढ़ूँ, और ये मैं देख के इसलिए भी पढ़ता हूँ ताकि मेरे जैसे और पढ़ने वाले रिवायतों को देख के पढ़ने से न झिझकें, देख के पढ़ लिया करो, इससे बेहतर है कि ना पढ़ो। दुरूद भेजे मोहम्मद ये रिवायत, जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, हमारे छठे इमाम से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये रिवायत हमारे पास ये काफी के अंदर है, उसूल काफी के अंदर है, तो इसका मतलब मुस्तनद रिवायत है। उसूल काफी के अंदर तकरीबन 90-95% रिवायतें ऐसी एवरेज में कह रहा हूँ मुस्तनद होती हैं, तो ये जनरली मुस्तनद रिवायत है। उसूल काफी में जिल्द 2 में है, इमाम ने फरमाया सलासुन मन अतल्लाह बिवाहिदत मिनहुन औजब अल्लाह लहुल जन्नत। तीन आदतें ऐसी हैं अगर कोई इंसान एक आदत के साथ भी अल्लाह के सामने आया तो अल्लाह उसे जन्नत नसीब कर देगा। तीन आदतें ऐसी हैं कि अगर एक भी उनमें से कोई ले आया बंदा तो अल्लाह उसे जन्नत दे देगा। ज़ाहिर कीपिंग इन माइंड कि उसने वाजिबात को पूरा किया हो। वो जो ये है ना, ये एन एपल डे चीफ डॉक्टर, अब ये नहीं कि जहर खाते रहो और एपल खाते रहो, वो तो फिर मर जाओगे, फिर एपल नहीं रोक पाएगा जहर। तो ये कह के बस तीन आदतों में से कोई एक भी अल्लाह के पास ले आओ जन्नत में पहुंच जाओगे, तो कह लो बस अब आइंदा से नमाज नहीं पढ़ूंगा, इनमें से कोई एक ले जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी शराइत के साथ चलना होता है। कोई वालदैन का एहतराम ना करे कि मैं ये तीन आदतें कर लूँ, नहीं, इस तरह नहीं होता, वाजिबात का ख्याल रखना होता। तीन आदतें क्या हैं, इमाम ने फरमाया, एक बार फिर مولانا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو درود بھیجیں. اللہ اکبر. ہمارا دعائے امام نے فرمایا تین عادتیں, ایک بھی اللہ کے پاس لے آؤ خدا اس کو جنت نصیب فرمائے گا. نمبر ایک, الانفاق من اقتار, پہلی عادت سختی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. میری جیب میں پیسہ ہے, میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں, یہ کمال ہے؟ نہیں. کمال کب ہے؟ کمال اس وقت ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, اب بھی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یہ کمال ہے. اب ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے, مثلا فرض کریں میری تنخواہ ہے نہیں اتنی, ایسی کہہ رہا ہوں $5,000 ہو, میری تنخواہ $5,000 ہے, میں مہینے کے اس میں سے 500 دیتا ہوں, کتنے پرسنٹ ہوگا؟ اگر یہ ہو گیا 15,000, میں ابھی بھی 500 دیتا ہوں. نہیں نہیں, میں نے چھکا مارا, میں نے حاتم تائی کی قبر پہ لات ماری, 700 کر دیا. پرسنٹیج میں کم ہوا ہے زیادہ ہوا؟ ہم لوگ معمولاً یہ کرتے ہیں, پہلے 100 دے رہے تھے جب تنخواہ 1,000 تھی, اب 5,000 ہو گئی, اب 200 دیتے ہیں. اور کچھ تو بیچاروں کی قسمت میں پیسے کا بڑھنا اتنی بدبختی لاتا ہے کہ جو دے رہے تھے پھر وہ بھی نہیں دیتے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا, بہت ہوتا. تو آپ اپنی زندگی میں سوچیں کہ بھائی میرے پاس پیسہ ہو اور میں خدا کو دوں, یہ بہت بڑا کارنامہ نہیں دینا ہی تھا. سختی میں ابھی آؤں, ایک مہینہ سختی کا آ گیا, اب میں کیا کروں؟ کہاں سے کم کروں گا؟ سب سے پہلے جو میں ڈونیشنز دے رہا تھا اس سے کم کروں گا. نہیں امام فرما نہیں, یہ تو تم نے پھر اپنی زندگی بدلاتے ہیں. سختی آئے اس میں سے کم نہیں کرو, اپنی زندگی میں سے کم کرو, اپنی لگژریز میں سے کم کرو, خدا کے دیے میں سے کیوں کم کرو؟ صحیح. اب آپ تین میں سے یہ سوچ رہے تھے کہ ایک تو ہمارے نصیب میں آئی جائے گی, جنت ملی جائے گی, پہلے والے پہ تو معاملہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا, باقی دو دیکھتے ہیں کیا ہو. آج رات کچھ تو پتا چل ہی جائے گا. بھائی صاحب اگر جنت میں نہیں گئے تو کہاں جاؤ گے, یہ سوچو. اللہ سب کو پہنچائے گا؟ سب کو اپنی بہترین جنتیں نصیب فرمائے گا. کیوں نہیں نصیب فرمائے؟ الانفاق من اختار, سختی میں بھی اللہ کی راہ میں انفاق دینا, انفاق کرنا. نمبر دو, البشر لجميع العالم, تمام انسانوں کے لیے کشادہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا. اچھا اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہر وقت مسکراتے رہنا, یہ تو والمارٹ کی سیلز مین بھی کر لیتے ہیں. یہ اللہ کے لیے مسکرا رہے ہوتے ہیں, یہ کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایس او پی ہے, اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو امام نے فرمایا اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں اتنی وسعت رکھنا کہ ہر انسان کو قبول کر سکوں, چاہے میری قوم کا ہو چاہے میری قوم کا نہ ہو, چاہے وہ مجھ سے سوشل اسٹیٹس میں کم ہو چاہے میرے سوشل اسٹیٹس کے برابر. ان تمام باتوں سے قطع نظر انسانوں سے انسان بن کے ملنا, یہ مانگا ہے. جب ہمارے ساتھ ایک مشکل ہے, مشکل کیا ہے؟ میں اردو زبان بولتا ہوں, سامنے والا کوئی اور زبان بولتا ہے, ایک بیریئر یہ ہو گیا. میری قوم یہ ہے, اس کی قوم یہ ہے, دوسرا بیریئر یہ ہو گیا. اس نے ایک دن میرے کپڑے پسند نہیں کیے تھے, تیسرا بیریئر یہ ہو گیا. کیا مشکل بنائی؟ یہ وہ ہے جو امام کہہ رہے تھے. امام نے فرمایا تھا تمام انسانوں کو قبول کرنا کھلے دل کے ساتھ, یہ جنتی کی نشانی. یہ جو بیریئر ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بیریئر یہ صفت کے خلاف ہے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کھلے دل کا ہونا چاہیے تھا. امام نے یہ فرمایا, पहली सिफत क्या हो गई, सख्ती में इन्फाक करना। दूसरी सिफत क्या हुई, तमाम इंसानों से खुले दिल के साथ मिलना। ये दो सिफतें हो गई। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इबादत आदतें कैसे डेवलप की जाती हैं, तो इसके ऊपर अभी बात करेंगे। तीसरी सिफत भी अर्ज कर दूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले सिफत यह है कि सब के साथ इंसाफ से पेश आना। अल्लाह अकबर, सब के साथ इंसाफ करना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि भाई मसलन फर्ज कर रहे हैं मेरे चार बेटे बेटे, अच्छा एक बेटा मुश्किल में मेरे काम आ जाता है, एक बेटा थोड़ा सा लाओबाली है, मुझे कौन सा पसंद होगा? सबके साथ बराबर की डीलिंग करूंगा मैं? नहीं, अब मैं इंसाफ में गड़बड़ करूंगा। जनाब मैं एक लोगों के एक गुरु के पास पहुंचा, उसने मेरी बड़ी तारीफ की, मैं एक और के सामने पहुंचा, उसने मेरी कोई तारीफ ही नहीं की, मैं इंसाफ करूंगा? नहीं, मैं स्लिप करूंगा। इमाम ने कहा इंसाफ करो, ये क्यों देख रहे हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम इंसाफ करो। सख्त हुआ या नहीं? अब एक बात है, जन्नत क्या सोच रहे थे मुफ्ते में मिलने वाली है? मिलेगी, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एक और वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, बड़ा नफीस वाक्य है, दुरूद भेजेगा मोहम्मद बात क्या होता है, किसी अजीम शान हस्ती के मिलाद का दिन होता है, हम लोग सारी बातें कर लेते हैं, उनके इल्म से इस्तेफादा नहीं करते, इसलिए मैंने छांट के आपकी खिदमत में मौला की हदीस पढ़ी, ताकि ऐसा ना हो कि उनके मिलाद का दिन आया, उनका नाम लिया और उनके इल्म से इस्तेफादा नहीं किया। नहीं, आप इल्म से इस्तेफादा करें, हक यह है कि उनके इल्म से इस्तेफादा करना चाहिए। अब मुझे एक वाक्य याद आ गया, तो मैं आपकी वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। जन्नत की बात थी, सख्ती और आसानी की। एक दफा अल्लाह के रसूल को अपने घर में एक दीवार बनवानी, एक दीवार बनवाने की कोई हिस्सा था, तो एक मजदूर को कहा कि तुम आके घर में ये काम कर दो। वो मजदूर आया, काम करने लगा। काम करने से पहले, और हमारे पास सुन्नत भी है, रिवायत भी है, काम करने से पहले अल्लाह के नबी ने पूछा कि ये बताओ तुम इस काम के कितने पैसे दोगे, ये उजरत तय करना चाहिए पहले। नबी ने पूछा इस काम के कितने पैसे दोगे, तो बंदा जो था वो थोड़ा होशियार आदमी था, तो उसने कहा कि नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैं आपसे उजरत नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं तुम ऐसे तय कर लो, दे दो। तो कहने लगा नहीं नहीं आप अल्लाह के नबी हैं, आप हमारे लीडर हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले लेंगे? नहीं नहीं मौला, मौला हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। थोड़ी देर तक, अच्छा नबी खुदा चूंकि छोटे छोटे काम जो भी काम करने वाले थे, छोटे लोग जिसको इस्तेलाह में हम लोग छोटे काम करने वाले कहते, उनके साथ भी बहुत दिलजोई से पेश आते थे, क्योंकि दीवार बना रहा था, तो अल्लाह के नबी थोड़ी देर वहीं खड़े रहे और इससे कुछ गुफ्तगू करते रहे। अच्छा ये आदमी मैंने क्यों कहा होशियार था, ये होशियार ऐसे था, इसने सोचा कि मैं पैसे ना लूं फिर क्या करूं, थोड़ी देर तक इधर उधर बात करता रहा, उसके बाद कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी दुआ करें मैं जन्नत में चला जाऊंगा। इसने सोचा मैं चार सिक्के लेके क्या करूंगा, जन्नत शायद मिली जाए, अल्लाह के नबी दे। अल्लाह के नबी ने देखा कि अजीब जुमला है शाह साहब, बहुत अजीब जुमला, फरमाया मैं दुआ करूंगा तुम अमल करो। मैं दुआ करूंगा तुम अमल करो। तुम सोच रहे ऐसी मुफ्त में? कुरान करीम फरमाता है तुम्हें हमने जन्नत में दाखिल किया है बिमा कुन तुम तामलून, उस अमल की वजह से जो तुम कर रहे थे। बिमा कुन तुम तामलून, न बिमा कुन तुम तालमून, उस इल्म की वजह से जो तुम्हारे पास था, नहीं अमल। अल्लाह के नबी ने कहा मैं दुआ करूंगा तुम अमल करो। ऐसा ही एक और वाक्य है, मैं दोनों वाक्यों को मामूलन साथ साथ अर्ज करता हूँ। ऐसे ही एक और वाक्य, अल्लाह के नबी नमाज के लिए तशरीफ लाए फजर में, फजर से थोड़ा पहले, तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था और वो कुछ इबादतें करके वहाँ पर आया होगा, वहाँ पे मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था, और जैसे आपने देखा होगा सर जानू के ऊपर रख के लोग बैठ जाते हैं बाद अवकात थकावट से, तो वह ऐसे बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी तशरीफ लाया, उसको थोड़ा सा थपथपाया। कल आपको याद है शायद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था, नबी किसी को अकेले बैठा देखते थे और तो उसके पास आया थपथपाया, कहेंगे फरमाए कि क्या हाल है, मसलन क्यों मसलन ऐसे तबीयत खराब है, क्या कैफा असबाह था, कैसे दिन गुजर रहे, तो कहने लगा कि असबह तो अला यकीन है, मैं यकीन पे जिंदगी गुजार। तो नबी अकरम ने असहाब के साथ थे, फरमाया मा हालो यकीन है कि तुम्हारा यकीन कैसा है। तो कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहा हूँ, यानी मैं अपने यकीन में एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ कि ये जो जन्नत में जाना है जहन्नम में जाना, ये सब मुझे नजर आ रहा है कि क्या होता है। अल्लाह के नबी ने तारीफ की कि ये आदमी जो है वो मेहनत करने वाला आदमी। अच्छा, उसकी आंखें भी सूजी हुई थी, लगता था इबादात से, अल्लाह की राह में घिरिए से। तो इस आदमी ने जब ये देखा ना कि अल्लाह के नबी मेरी तारीफ कर रहे हैं, तो इसने एक सवाल किया और ये भी मांग रहा है कुछ, वो दीवार वाला भी मांग रहा था। इसने क्या मांगा, कहा अल्लाह के नबी दुआ करें मैं शहीद हो जाऊं। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है? वो चाह रहा था कि मैं बगैर किए जन्नत में पहुंचूं, इसने कहा कि नहीं, मैं एक तो मैं जन्नत और जहन्नम को तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैं बगैर किए दर्जात नहीं चाहता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे अमल की दुआ दे। तो इसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी दुआ करें मैं शहीद हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारी लिए दुआ करूंगा, तुम शहीद हो जाओगे। तो असहाब कहते हैं कि हम अगले गजबे का इंतजार कर रहे थे कि ये शहीद होने वाला है, और ऐसे ही हुआ। अगला गजबा हुआ, ये जंग करने गया, लोग देख रहे थे ये वो है जिसके लिए दुआ हुई थी, फौरन शहीद हुआ। तो जब कोई मुफ्ते के लिए दुआ करे कि बगैर अमल के मुझे कुछ मिल जाए, तो वो कहते नहीं अमल करो, और जब कोई अमल के लिए कहता है दुआ करें कि मैं अमल करूं, उसको कहते हैं हाँ हम दुआ करें। ये फर्क हो गया। तो भाई आपके सामने तीन आदतें आ गई। एक आदत क्या थी, सख्ती में अल्लाह की राह में इंफाक करना। दूसरी बात क्या थी, इंसानों को खुले दिल से मिलना, ये नहीं सोचो इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या नुकसान होगा, नहीं, खुले दिल से मिलो, ये मत सोचो कि मैं इससे क्या फायदा उठा लूंगा। ये बदतरीन रिश्ता ये रिश्ता है जिसमें इंसान किसी से कुछ लेने की कोशिश कर रहा होगा, इससे दुश्मनियां बनती हैं, इससे कोई दोस्ती नहीं बनती। आपको इंसानों को दोस्त बनाना है, मतलब आप चाहते हैं सेंटर आए, सबको अपना दोस्त बनाए, तो शोबाजी करके नहीं करें, ये करें कि वो करके नहीं करें, आप सिर्फ एक काम करें, यहाँ पर आए सिर्फ एक बात सोचें, मुझे किसी को कुछ देना है, सबको दुआ देनी है, सबके किसी काम आना है, बस इतना सोचते हैं, ये नहीं सोचें मुझे किसी से क्या मिलेगा। आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी। पहली बात सख्ती में इंफाक करो, दूसरी बात खुले दिल से इंसानों को कबूल करो, तीसरी बात ये कि इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ो। अच्छा, अब आप इन आदतों को कैसे इख्तियार करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर अर्ज करते हैं और आपकी जहमत तमाम, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब आप इसके ऊपर अमल करना चाहते हैं तो कहां से शुरू करें? मैं मशवरे के तौर पर कहूंगा छोटी सी कोई अमाउंट अपने जहन में बनाए, और आप ये सोचेंगे भाई ये मैंने सख्ती आसानी हर सूरत में देना है अल्लाह की राह। जिस महीने नहीं हुई कोई इनकम फिर क्या होगा, तब भी देना है, कर्ज लेके दूंगा, तब भी तो मिजदाक बनेगा ना, सख्ती में देना। कुछ बनाए ऐसा अपनी जिंदगी के अंदर, उसूल बनाए। अच्छा, जो देना है इन्फाक, एक और बात भी अर्ज करता चलूं, ये इन्फाक हमेशा पैसे का नहीं होता, इन्फाक हमेशा पैसे का नहीं होता। मसलन इन्फाक किस चीज का भी हो सकता है, मैं अर्ज करता हूँ अभी जब, क्या खुशी का इन्फाक नहीं हो सकता? हो सकता है। मसलन क्या मतलब, सख्ती में इन्फाक करने का मतलब क्या होगा, जिस दिन मैं खुश हूं मैं सबके साथ मजाक करता हूँ, सबको खुश करता हूँ, और जिस दिन मैं सख्ती में होता हूँ तो फिर मैं एक ऐसे चेहरे के साथ देख आता हूँ कि लोग कहते हैं भाई अल्लाह ही पर जल तू जलाल तू, आज तो कुछ और ही हुआ हुआ है। भाई आप चेहरों को इस तरह से रखो कि देखने वाला आपसे बात करने की हिम्मत तो करे। इतने सख्त चेहरे लेकर आओगे तो फिर तो भी सोसाइटी में क्या हो जाएगा। तो आप जब आए मिसाल के तौर पर सेंटर में लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ ऐसा चेहरे के साथ मिले कि कम से कम किसी की कहने की हिम्मत तो पड़े कुछ, सही। इस तरह खुले वजूद के साथ आए ताकि आप इंशाल्लाह कुछ लोगों के लिए कारामद हो सके हैं
इंशाल्लाह।
इंसान किस इंसान की जिंदगी में सख्ती नहीं होती, सख्ती तो हर इंसान की जिंदगी में होती। मैं एक बात पूछता हूँ, ये रिवायात जिन अजीम शान हस्तियों ने कही है इनकी जिंदगी आसान थी? امیر مومنین ایک جملے میں فرماتے ہیں المومن حزنہ فی قلبہ بشرہ فی وجہ. مومن وہ ہوتا ہے جس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے, خوشی اس کے چہرے پر. اچھا خود امیر المومنین سے زیادہ غمزدہ کوئی ہوگا؟ یا اللہ, میں جب مصائب امیر مومنین کو سوتا ہوں تو میں سوتا ہوں مسکراتے کیسے تھے. ان عظیم الشان مصائب کے ساتھ خود مسکرانے کی ہمت تھی. عام آدمی ہوتا نا تو ڈپریشن میں مر جائے گا, اس پر بھی مسکراتے تھے. یہ کمال ہے ان کا, معجزہ یہ ہے. یہ جو عظیم الشان ان کا کردار ہے یہ معجزہ ہے. تو بھائی سختی کس کی زندگی میں نہیں ہوتی؟ آپ کہیں بھائی میں آ جاؤں میرے اوپر سختی ہے اس وجہ سے میرے اندر مسکرانے کی ہمت نہیں ہے. بھائی سختی تو سب کی زندگی میں ہوتی ہے. آپ کیا کرو اگر میں کسی دن آؤں نا منہ, جس کو میں نے کل آپ کی خدمت میں کہا تھا قرآن کریم نے لکھا کچھ لوگوں کو ہم محشر میں اٹھائیں گے ابوسن کم تلیرا, یعنی کیا مطلب؟ بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ, سخت چہروں کے ساتھ, کرخت چہروں کے ساتھ. تو مثلا آج میرے ساتھ معاملہ خراب ہے, میں کرخت چہرے کے ساتھ اندر آ گیا ہوں. پتہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں پوری دنیا میں اپنا ٹینشن پھیلا رہا ہوں. کوئی میرا چہرہ دیکھے گا نا تو وہ کہے گا لو بھائی دنیا تو سختیوں سے بھری پڑی ہے, بھائی تھوڑا سا مسکراؤ تاکہ لوگوں کا ٹینشن ریلیز ہو. ذرا آپ کو اپنے وجود سے تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا چاہیے. میں اپنا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جو میرے ساتھ بڑا اچھا ایک واقعہ پیش آیا. درود بھیجے گا محمد والے. اگر میں کوئی ورک شاپ کر رہا ہوتا نا تو آپ سب سے کہتا بھائی ایسا کرو ایک منٹ تک مسکرا کے دکھاؤ. اتنی کوشش کے باوجود ایک دو چہرے ہل کے تو نہیں دیا بھی تھا, اب تھوڑے سے ہل لیے. خدا رحم کرے آپ سب اپنی خوشیوں کے لیے درود بھیجے محمد والے. ایک دفعہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا, بہت پہلے کی بات ہے, بہت پہلے کی. میں اس لیے بتاؤں کہ آپ نے سوچے گا میں اب بھی ایسے ہی نکلتا ہوں, بہت پہلے کی بات ہے یہ. تو خیر میں گھر سے باہر نکلا, بہت ٹینشن میں تھا. پتہ نہیں مجھے نہیں یاد کیا مزہ تھی کس کیا ہوا تھا, بہت سخت ٹینشن میں. تو میں گھر سے باہر نکلا. اچھا وہ دن بھی کوئی میلاد کا دن تھا, کوئی ایسا خوشی کا دن تھا, عید کا کوئی دن تھا. تو میں بہت ٹینشن میں گھر سے باہر نکلا تو ایک آدمی ادھیڑ عمر سے تھوڑا زیادہ تھا, بالکل بوڑھا بڑھاپا تو نہیں تھا لیکن ادھیڑ عمر سے تھوڑا زیادہ, وہ میرے سامنے آئے. اجنبی, بالکل اجنبی آدمی, ایران میں ہوا تھا یہ, بالکل اجنبی آدمی میرے سامنے آیا. آ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیا, میری طرف دیکھا, کہنے لگا السلام علیکم. اور میں بہت ٹینشن میں تھا, میں نے کہا وعلیکم السلام. تو میری طرف دیکھتا رہا, تھوڑا سا ہنسا, کہنے لگا مسکراؤ. اور میں اتنا زیادہ ٹینشن میں تھا, اس نے پہلے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو میں نے ہاتھ یوں کیا چھڑا ہوا, اس نے اور ٹائٹ پکڑ لیا, کہنے لگا مسکراؤ. اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا, میں سوچا اس کا ہاتھ چھڑا کے بھاگ گیا. پھر میں نے بہت کنٹرول کر گیا, میں نے اسی طرح سخت منہ کے ساتھ اس سے کہا کیوں مسکراؤں, مجھ سے مسکرایا نہیں جا رہا تھا, میں اتنا ٹینشن میں تھا. تو میں نے کہا میں کیوں مسکراؤں. اس نے اسی طرح ہاتھ پکڑا جیسے میری بات تو سنی نہیں, دوبارہ پکڑ کے اور تھوڑا سا ہنسا, کہنے لگا مسکراؤں. اب میں نے کہا یار کون سا انسان مل گیا ہے صبح ہی ہنسا کے چھوڑے گا. تو جب اس نے دوسری دفعہ کہا تو اب میں نے سوچا یار یہ بہت بد اخلاقی ہو گیا بھائی اگر میں ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کروں گا. تو میں تھوڑا سا یوں کر کے ذرا سا میں مسکرایا, تو کہنے لگا اچھا تھا لیکن تھوڑا سا اور مسکراؤ. میں نے کہا بھائی یہ تو آج پتہ نہیں کون مل گیا. اچھا اتنی دیر میں میرا تھوڑا ٹینشن کم ہوا, تو میں تھوڑا سا اور ہنسا, تھوڑا سا ہنسا, کہنے لگا کہ اچھا لگا نا. میں کہا اچھا لگا, کہنے لگا اور ہنس لو. اب میں کھول کے ہنسا, کہنے لگا یہ بہت اچھا ہو گیا, اب جاؤ اپنے کام پر, بیٹا کیوں ٹینشن لے رہے ہو, اتنی سی زندگی ہے تمہاری, ٹینشن لے لے کے اپنے آپ کو مارے. دیکھو سکون ملا نا. میں نے کہا ہاں سکون ملا, آپ کا بہت بہت شکریہ, اس کا میں نے گلے سے لگا. زندگی میں چہرے بنا کے کیا ملنا ہے؟ امام زمانہ تھے مولانا, میرے میں اتنی بصیرت نہیں, آپ میں اتنی بصیرت نہیں. میں کیا بولوں, तो माशाल्लाह देखिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ईद पे खुश रहें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खुशियों में इजाफा फरमाए, आपकी तकवा परहेजगारी में इजाफा फरमाए। हमें अहले बैत से सीखना चाहिए, उन्होंने हमारी जिंदगी को अच्छा करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। देखिए मैंने सिर्फ एक रिवायत पढ़ी है अभी आपके सामने, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, पर्सनल के अंदर बेहतरी लाने के लिए, पर्सनैलिटी में पता नहीं सैकड़ों रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं। आप इन रिवायतों को देखें, इनसे सीखने की कोशिश करें, अच्छी अच्छी आदतों को इख्तियार करें, आपका कैरेक्टर बेहतर हो, देखिए और बेहतर होता चला जाएगा, जिंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। सबसे बड़ा फायदा कब मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा आखिरत में जो मकाम मिलेंगे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? जिनको आप पसंद करते हैं ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं योर लव्ड वंस, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव डेवलपमेंट। भाई उन्होंने तो आपके साथ रहना ही रहना है ना, खुश रखे रखे, तंग करके क्यों रखे। तो ये जो मैं मैसेज अर्ज कर रहा हूँ, ये जितना मैं मर्दों के लिए कह रहा हूँ उतना ही पीछे खवातीन के लिए भी कह रहा हूँ। कहीं आता ना हो इन बेचारों ने सारी कुर्बानियां देनी हो ऊपर अल्लाह ही रहम करे। एक लतीफा सुना देता हूँ, ईद का दिन है ना, अब कोई और दिन होगा तो मैं इतने लतीफे नहीं सुनाता हूँ, लेकिन आज ईद का दिन है तो मैं आपको खूब लतीफे सुना रहा हूँ। और इसी खातिर मैं रिवायत भी सुनाई था कि भाई कोई बात नहीं है ना कि मौलाना ने, एक दफा मैंने इस तरह काम किया, किसी ने कहा मौलाना आप तो नॉन सीरियस पढ़ते हैं, तो मैंने उनसे कहा भाई को मिलाद के दिन तो कम से कम हंसवाने दो यार, ऐसा नहीं कि इनको तो इस दिन तो हंस लें भाई। तो जनाब अली एक दफा क्या हुआ, हमारे मौलाना साहब हैं, नाम लेने में कोई हैरत नहीं है, अच्छी बात है, मौलाना जान अली शाह साहब, मौलाना जान अली शाह साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो जनाब अली एक दफा कहीं पढ़ रहे थे नॉर्वे में पढ़ रहे थे, तो मौलाना ने एक रिवायत पढ़ी और रिवायत ने बताया कि भाई देखो जो औरत अपने बद अखलाक शोहर की बद अखलाकी पर, कॉमन केस है, कोई औरत अपने बद अखलाक शोहर की बद अखलाकी पे सब्र करे, अल्लाह उसे जन्नत का मकाम देगा, शहीद का मकाम देगा, शहीद का मकाम देगा खुदा। ये रिवायत है, रिवायत बिल्कुल सही, रिवायत ये है कि जनाब अली अगर कोई औरत अपने बद अखलाक शोहर की बद अखलाकी पे सब्र करे तो खुदा उसको शहीद का मकाम देगा। अब पता नहीं ऊपर बैठी हुई कितनी खवातीन शहादत का मकाम हासिल कर रही होंगी, अल्लाह जानता है। हाँ, एक आदमी बैठा हुआ था और उसने कहा कि मौलाना अगर कोई मर्द अपनी बद अखलाक बीवी की बद अखलाकी पे सब्र करे, भाई अगर कोई औरत सब्र करे बद अखलाक शोहर की बद अखलाकी पे तो उसको तो शहीद का मकाम मिलेगा, अगर कोई मर्द अपनी बद अखलाक बीवी की बद अखलाकी पे सब्र करे तो उसे क्या मिलेगा। तो मौलाना ने कहा कि भाई ऐसा लगता है कि उसको भी शहीद का मकाम मिलेगा। तो कहने का मौलाना ये हॉल शुहदा से भरा हुआ है, हॉल शुहदा से भरा हुआ है। तो भाई अब वो है कि नॉर्वे को मुबारक हो इतने शुहदा, पता नहीं यहाँ कितने शुहदा होंगे, भारत यहाँ भी काफी होंगे, आप लोग विटनेस हैं बाहर है। तो इसमें ये था कि आप लोगों की खुशियों को खुदा पाकीज़ा खुशियों में और इजाफा फरमाए। एक खुशी वो होती है जो गफलत की खुशी होती है, खुदा हमें गफलत की खुशी से बचाए, गफलत की खुशी से। गफलत की खुशी कौन सी होती है? पैसा आया, दौलत आई, ताकत आई, इंसानियत भूल गए, रिश्ते भूल गए, नाते भूल गए, सबको एरोगेंस से देखना शुरू कर दिया, किसी को हंसी डाल रहे, क्यों? मैंने 5,000 डोनेशन किया है। अल्लाह, ये बुरी खुशी है। अच्छी खुशी कौन सी होती है? आप आए, आप दीन के नाम पर खुश हुए, अल्लाह की इताअत से खुश होना, अल्लाह की इताअत से खुश होना। देखिए हमने इतनी देर में बैठ के कोई गुनाह तो नहीं किया, किसी की गीबत तो नहीं की, सही? अभी ये जो हम खुश हुए थे, हम इताअत पे खुश हुए थे या गुनाह पे खुश हुए थे? ये खुशी बाकी था, भाई हमने किसी की गिबत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने अच्छाई की बातें की, रिवायतों की बातें की, इस पे भी आप खुश हुए थे ना, मैं तो दिल खोल के खुश हुआ, आप भी खुश हुए थे, ये पाकीज़ा खुशी है। अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी और आपकी पाकीज़ा खुशियां मिलाए। अल्लाह से दुआ करती हूँ ईद का मौका है, पाक परवरदिगार मुझे वास्ता नबी और औलाद नबी का जिनके नाम से ये मीलाद मंसूब है, इस कदील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदाया हमारे दिलों को उनकी खुशियों में खुश होने की सआदत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार उनके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की सआदत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार उनके चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, बिलखस वो मजलूम अवाम जो यमन के अंदर है, नाइजीरिया के अंदर है, दुनिया के मुख्तलिफ खितों के अंदर है, खुदाया इन तमाम मजलूमों को खुशियाँ नसीब फरमा। ऐ खुदाया इन तमाम की मजलूमियत के बावजूद इन सबको फतह नुसरत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमारे बीमारों को तुझे वास्ता है खुदाया, तेरे नबी का, उनके औलाद ताहिरा का, बिलखस इमाम शशम का वास्ता, हमारे तमाम बीमारों को शिफाए आजिल कामिल नसीब फरमा। जो बेगुनाह जेलों के अंदर है सब कुछ ऐसे शेख ज़क़ज़क़ी मज़लूम जेल के अंदर है, खुदाया आज़ादी और रिहाई नसीब फरमा। खुदाया तुझे वास्ता नबी और औलाद नबी का, हमारे मरहूमीन दुआओं के मुंतज़िर हैं खुदाया, इस ईद मीलाद का वास्ता हमारे तमाम मरहूमीन के तमाम गुनाहान सगीरा और कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया हमारे भी तमाम गुनाहान सगीरा और कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे चाहने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं खुदाया, पाकीज़ा हों, तेरे नेक बंदे हों, उन सब की कामयाबियों में इजाफा फरमा। खुदाया तमाम दुआएं तेरी हुज्जत के लिए हों खुदाया। ईद का दिन वो दिन है जब तेरी हुज्जत की तशरीफ आवरी हो खुदाया। तुझे वास्ता नबी और औलाद नबी और कुरान करीम का, सैयद और सरदार, मौला और आका, इमाम आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें हमारी नस्लों को उनके जानिसारों में करार फरमा। हमारी जिंदगियों का इख्तिताम शहादत की मौत करार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।
تشریف رکھیں منقبت کے لیے اور محمد وال محمد صلی اللہ علیہ
وسلم
اور حبیب خدا ختم انبیاء بلند تر صلوات اللہ
صلی اللہ علیہ محمد
السلام
علیکم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے رسول